प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आपके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की होने वाली आगे की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और मित्रों आप लोगों के कान अभ्यस्त हो गए होंगे मेरे इस वाक्य को सुनने के जिसमें मैं कुछ एक तरीके से रटे रटाए शब्द बोला करता था कि 19 फरवरी से होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन कराए हैं। इस बार आपको वो सुनने को जब नहीं मिला है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा कि कुछ मिसिंग है। मित्रों वह मिसिंग नहीं है। दरअसल बात यह हुआ है कि अभी जो 5 साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं इसमें 2 साथी वे हैं जो अभी 19 फरवरी से क्लासेस होने वाली हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनका रजिस्ट्रेशन उस क्लास के लिए है और बाकी 3 साथियों का जो रजिस्ट्रेशन है वह लगभग 8 महीने बाद जब 22 अक्टूबर से क्लासेस होंगी, जो 22 अक्टूबर से 5 नवंबर वाली जो क्लासेस हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं क्योंकि आप लोगों में से कुछ को ये गलत फहमी हो सकती है मित्रों कि ये जो 2 स्टूडेंट कि जिनके मैं अभी नाम ले रहा हूं जो 19 फरवरी की क्लास के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है ये घोषणा से पहले एडमिशन ले चुके थे। आपको मालूम है बीच में शनिवार रविवार ये 2 दिन थे और मुझे जो नाम मिलते हैं वो इवनिंग में मिलते हैं तो मंडे के जो मुझे नाम मिले वो इवनिंग में मिले तो मंडे को मैंने इस बात की घोषणा की थी। तो इस बीच के ये रजिस्ट्रेशन है इसीलिए आप बिल्कुल इस रूप में इसे मत लीजिएगा कि ये आउट ऑफ द वे जाकर के किसी को फेवर किया गया है। नहीं, यह उनके अधिकार की ही बात है जिसके तहत उनके ये दाखिले इस बैच के लिए हुए हैं। तो मित्रों अभी जो फरवरी में क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए जो 2 स्टूडेंट के नाम हैं वो हैं अरविंद सिंह संभल उत्तर प्रदेश से और प्रेमजीत विष्णु बाते ये हैं इजलकरंजी महाराष्ट्र से। तो अरविंद और प्रेमजीत आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से इस बैच के लिए स्वागत करता हूं। और मित्रों अब मैं पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट बैच के पहले एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का। और ये जो बैच है जैसा कि मैंने बताया ये 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2017 के बीच होना है। 22 अक्टूबर से शुरू होगा, 5 नवंबर को ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों उसमें 3 मित्रों ने पहले ही दिन एडमिशन कराए हैं और इन 3 नौजवान साथियों के नाम हैं किशन मीना धौलपुर राजस्थान से, रेणु अमरोहा उत्तर प्रदेश से और उज्जवल आनंद गया बिहार से। यानी कि 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व पहले ही दिन के एडमिशन की लिस्ट में हो गया है, राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार। तो किशन रेणु और उज्जवल आप 3 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और चूंकि अक्टूबर के बैच का यह स्वागत का पहला दिन है इसीलिए मैं विशेष गर्मजोशी से आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और फिर से नाम लेना चाहूंगा किशन रेणु और उज्जवल। मित्रों अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। आज के न्यूज एनालिसिस का मतलब है रेडियो की कल की खबरें। कल के रेडियो की खबरें जो है मित्रों संख्या में काफी हैं। कई खबरें ऐसी थीं जो कंटेंट के रूप में भी हमारे लिए उपयोगी हैं और यहां तक कि टॉपिक के रूप में भी वो हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हैं। एक आपने जल्लीकट्टू का तो आप सुन ही रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से अध्यादेश लाया गया और इसके बाद फिर राज्य की विधानसभा में उससे संबंधित कानून पारित किया गया और वो कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनता का दबाव इतना ज्यादा है, जनाकांक्षाएं इसके फेवर में इतने अधिक हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इन जन आकांक्षाओं का विरोध करने का साहस कर ही नहीं सकती थी। तो सर्वसम्मति से ही पारित होना था क्योंकि फिर जब वो पब्लिक के बीच जाते तो क्या जवाब देते। दोस्तों ये बात अलग है कि जुडिशरी वर्सेस परंपरा, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, इस तरह की बहस इससे शुरू होंगी। लेकिन यहां आप अगर एक अलग चीज देखना चाहें जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो यहां आपको डेमोक्रेसी की ताकत दिखाई देगी कि जो जनता है वो कितनी अपने आप में शक्तिशाली है। ये बात अलग है कि फिर वो अपनी शक्ति का उपयोग किन चीजों के लिए कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने न्यायपूर्ण चीजों के लिए, समानतापूर्ण समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए, या अपनी उन परंपराओं के लिए जो बहुत ही प्रगतिशील परंपराएं हैं और जो अभी भी समाज के लिए उपयोगी हैं, या सड़ी गली परंपराओं के लिए, या व्यर्थ की चीजों के लिए, या आपसी रंजिश के लिए, ये आप हमारे ऊपर है, ये पब्लिक के ऊपर है। लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर पब्लिक इकट्ठी होकर जब कोई भी डिमांड इस रूप में करती है तो सरकार में फिर इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वह उसकी एकदम से अनदेखी कर सके। हाँ, यदि पूरी तरह से मांगे न्यायपूर्ण नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर सरकार भी ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के सामने झुक ही जाएगी। फिर तो पता नहीं हम क्या क्या मांगे कर सकते हैं। हम सती प्रथा को भी सही ठहराने के लिए मांगे कर सकते हैं, बाल विवाह के लिए भी हम मांग कर सकते हैं, यहां तक कि नरबलि के लिए मांग कर लीजिए कि हमारे यहां रहा है, ये शास्त्रों में मिलता है। लेकिन इनके सामने सत्ता झुकेगी नहीं, क्योंकि ये अमानवीय है, असंवैधानिक है। तो आपको चीजों को एकतरफा नहीं देखना है। जो सिविल सर्विस की जो सबसे बड़ी चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिहाज से देखिए, वो यही है कि हम सब एक वातावरण में रहते हैं। उस वातावरण में रहते रहते हमारे जो विचार हैं उस वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं, है ना। हमारे देखने की एक दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो हमारी ये दृष्टि होती है ये बैलेंस्ड नहीं होती। बैलेंस्ड इसलिए नहीं होती क्योंकि हम या तो किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं या किसी चीज को सीधे सीधे अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि हम बायस्ड हो जाते हैं, पूर्वाग्रह दुराग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। और जैसे ही हम पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो हम फिर उसके बारे में इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं, हम निष्कर्ष नहीं निकालते। देखिए, दोनों में फर्क है। निष्कर्ष निकालने का मतलब है कि आप उसका मंथन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग लगा रहे हैं, समीकरण तैयार कर रहे हैं और फिर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और डिसीजन लेने का तो मतलब है कि जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अपने फेवर में लगा, मैंने तुरंत हां या ना कह दिया। फ्रेंड्स, अब सिविल सर्विस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अनसॉल्व्ड पेपर के संपर्क में आप सब बने रहें, तो आप देखिए कि उसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन, अपने तर्क दीजिए, आप कहां तक सहमत है, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ये नहीं करना है आपको कि नहीं मैं तो ये चाहता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, नॉट एट ऑल, आपसे वो उम्मीद नहीं की जाती है। एज ए सिविल सर्वेंट जब आप किसी पद पर होंगे तो आपके चाहने न चाहने का कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। वहां तो यह है कि आप कितने व्यवस्थित, कितने वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से संवैधानिक प्रावधानों और रूल्स रेगुलेशन के फ्रेम में अपने काम को पूरा कर पाते हैं। तो यू विल हैव टू बी ए लॉजिकल पर्सन, आपको एक तार्किक व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो मित्रों, आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो, किसी भी तरह की कोई घटना हो, तो अपने बायसनेस जो है उससे मुक्ति पाइए और उसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश कीजिए जैसे कि वो है वाकई में, और फिर उस पर अपना निष्कर्ष निकालिए। दोस्तों, इसके बाद फिर आपने देखा, एक फिर से एक न्यूज सुनी कि मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक की नियुक्ति की जाए और सदस्यों की भी नियुक्ति की जाए। ये जो डायरेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मित्रों, मानवाधिकार आयोग अपने आप में एक टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि अब ये केवल नेशनल इश्यू नहीं है, ये हमारा इंटरनेशनल इश्यू है। मानव अधिकार, लगातार ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाने लगी है। अब इसमें जो सबसे अफसोस की बात है वो ये है कि अगर पद खाली हैं और जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था है और जो हमारे संविधान में, हमने संविधान में मानवीय गरिमा की बात कही है और मानव अधिकार उसी के लिए है, मानव अधिकार आयोग मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए है, तो फिर वो पद भरे क्यों नहीं जाते। पहली बात, आपको एग्जीक्यूटिव का यहां फेलियर दिखाई देगा। रीजन चाहे जो भी हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की अपनी समस्याएं होंगी, अपनी प्राथमिकताएं होंगी, अपनी सोच होगी, जो भी है। तो फिर यहां सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ता है। आप देख रहे हैं ना, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों आना चाहिए? अगर वो पद भर दिए जाते हैं, आफ्टर ऑल कलेक्टर का पद कितने दिन खाली रहता है, जो इतने महत्वपूर्ण पद है, एसपी का पद कितने दिन खाली रहता है, आप उन्हें जरूरी समझते हैं और तुरंत भरते हैं, तो हम सारे पदों के साथ इसी तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि जुडिशरी को इन सब के बारे में निर्देश देना पड़ता है, और वो भी निर्देश किस तरीके का कि आप इतने दिन में इसको भरिए? आप देख रहे हैं, जिसे हम फिर एक तरह से न्यायिक सक्रियता का नाम दे देते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दे देते हैं। ठीक इसी तरह से फिर आप दूसरा मामला देखिए, वो भी न्यूज में है, सोच के देखिए मित्रों, कि सीबीआई के जो हमारे पूर्व निदेशक रहे हैं, उनके लिए जांच कमेटी बनाई जा रही, उनकी जांच हो रही है, मतलब सीबीआई जो खुद जांच करने के लिए बनाई गई संस्था है, उनके निदेशक की जांच हो रही है। मिस्टर सिन्हा की आपने न्यूज में सुना होगा, और ये जो 2G स्पेक्ट्रम और जो कोयला खदान जो आवंटन हुए थे इससे पहले की सरकार के दौरान, उस समय की ये घटना है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। तो संस्था के रूप में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं मिली दोस्तों, टॉपिक के रूप में, ये दोनों टॉपिक ही हैं, वो है मानव अधिकार आयोग, और 2014 में मुझे ध्यान आ रहा है या 2013 में एक क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा गया था कि मतलब ये दिया गया था कि मानव अधिकार आयोग के पास एक तरह से कोई अधिकार तो है नहीं, मतलब भी बिना दांत और नाखून की संस्था है, तो फिर उसका अर्थ क्या है जब वो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो मतलब उसको अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए, इस तरीके से एक प्रश्न पूछा गया था। अब आप देख रहे हैं कि यहां भी आप उच्च पदों पर अगर लोगों की भर्ती ही न करें तो हाथ पैर ही नहीं है, नाखून और दांत तो बाद में आएंगे, पहले आदमी तो हो जिसके नाखून और दांत हो, तो जब पदाधिकारी ही नहीं है तो फिर से ऐसा लगता है जैसे कि इस तरह की संस्थाओं को क्या जानबूझकर कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। आप सूचना आयोग के बारे में भी आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी, केंद्र पर और राज्यों में भी यही स्थिति है, मानव अधिकार आयोग के बारे में भी यही सुनने को मिल जाता है, लोकायुक्त के बारे में भी यही चल रहा है, लोकपाल नामक संस्थाओं के बारे में भी यही चल रहा है, मतलब ये वो संस्थाएं हैं जो वॉच डॉग की तरह ह्यूमन राइट्स, मनुष्य के अधिकार, उनकी गरिमा, इन सब की रक्षा करती हैं, जांच करती हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखती हैं, तो क्या ऐसी संस्थाओं को कमजोर बनाया जाना चाहिए या और मजबूत किया जाना चाहिए? तो इस तरह से ढेर सारे सवाल फिर इस तरह की सिचुएशन में उठते हैं जिन पर आपको विचार करना है। मित्रों, इसके बाद जो दो छोटी छोटी जो खबरें हैं वो गणतंत्र दिवस पर आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात कि जो प्रिंस हैं वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। सिविल सर्विस में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, हालांकि अब इसकी भी परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। तो एक सामान्य सी जानकारी आपके लिए है जो खबर थी। और फिर बजट के बारे में आपने देखा, लग रहा था मित्रों कि कहीं ऐसा न हो कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत न हो पाए, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव घोषित हो गए हैं उसके आचार संहिता को लेकर के ये विवाद चल रहा था, और इसके बारे में फिर चुनाव आयोग ने भी केंद्र सरकार से कुछ जानकारियां मांगी थी, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उसे रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि नहीं, बजट आने का कोई उस तरह का प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ेगा, इसलिए बजट एज इट इज 1 फरवरी को आ सकता है। तो बजट 1 फरवरी को आ रहा है, तो ये कंटेंट के रूप में, घटना के रूप में आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, फिर से एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको मैंने जानबूझ करके आखिरी के लिए रखा है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए एक नियामक, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात। ये एक बहुत ही एक नया विचार सामने आया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, और विमुद्रीकरण के बाद तो लगातार जो ई भुगतान की जो स्थितियां होंगी लगातार बढ़ती चली जाएंगी, और सरकार कैशलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की बात भी कर रही है, तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तो बढ़ता चला जाएगा। बट नेचुरली जब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बढ़ेंगे तो नई नई कंपनियां आएंगे, उसमें अलग तरीके के संकट पैदा होंगे, कॉम्पिटिशन होंगे, पैसों का भी है, इधर उधर से कुछ होगा, हैकिंग होगी, इस तरह के दुनिया भर की प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। तो मित्रों, अब क्या किया जाए? देखिए, हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहली बात कि जो भी मुद्रा से संबंधित मामले हैं उनके लिए जो अथॉरिटी है हमारे पास अभी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा पर सारा का सारा नियंत्रण, मुद्रा नीति रिजर्व बैंक के हाथ में है। मित्रों, ये हमारा सेंट्रल बैंक है और जब इस पर बात हो रही थी कि क्या एक स्वतंत्र नियामक बनाया जाना चाहिए, तो रिजर्व बैंक ने साफ साफ ये बात कही कि नहीं, नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक इसके लिए ऑलरेडी है और रिजर्व बैंक को ही यह अधिकार होना चाहिए कि वो नियामक की भूमिका निभाए। तो अलग से प्राधिकरण स्थापित करने की जरूरत नहीं है, ये रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। लेकिन मित्रों, एक जो दूसरा जो समिति बनाई गई थी इसके लिए सुझाव देने वाली, आपको उस समिति का नाम भी मालूम होना चाहिए बहुत, चूंकि आप देखेंगे कि ये जो नियामक, ये बहस अब आगे बढ़ेगी, वो है रतन वाटल समिति। रतन वाटल समिति, इन्होंने रिकमेंड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक नियामक बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नियामक बनाया जाए। उसके सामने रिजर्व बैंक ने इसके अगेंस्ट में अपनी बात रखी। अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। इस पर एक दो जो एडिटोरियल कमेंट भी आए हैं उसमें यही बात कही गई है कि रिजर्व बैंक के पास दूसरे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, और चूंकि डिजिटल लेन देन जब होगा तो उसकी समस्याएं भी बहुत सारी होंगी, उसकी संख्या भी बहुत सारी होंगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम भी आएंगी। इसलिए बहुत अच्छा है कि एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी जाए, और ताकि वह इसके इस पर पूरा नियंत्रण रखते हुए स्पेशलाइजेशन के साथ इस काम को कर सके। तो दोस्तों, अभी तो ये बहस की बात है, देखते हैं कि आगे जाकर के क्या होगा। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात है, जिसको हम नियामक निकाय कहते हैं, ये आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में है और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लगभग लगभग मैं देख रहा हूं कि हर साल नियामक को लेकर के कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्लीज इसे आप बहुत ध्यान में रखिएगा और इस पर जो भी डेवलपमेंट होते हैं उससे जुड़े रहिएगा। जहां तक मेरी बात है, तो जब भी मेरे सामने कोई ऐसी बात आएगी तो उसके बारे में मैं आपसे परिचय आपका कराता ही रहूंगा। मित्रों, अब है न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स की बात। तो आज मैं आपको न्यूज़पेपर्स की काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। वक्त नहीं है कि इन क्लिपिंग्स पर बातचीत की जाए, तो दोस्तों यह आपके लिए उपलब्ध है, आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से आप इन क्लिपिंग्स के साथ न्याय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं एम एस खान, आलोक कुमार सुधांशु, शाह फहद इकबाल कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अभिषेक राय, रमाकांत पटेल, किरण शेत सांधी, हर्षित राज चौधरी दरभंगा बिहार से, निखिल सेठी बक्सर बिहार से, हर्षिता रजक, अनुग्रह द्विवेदी औरैया उत्तर प्रदेश से, और धनंजय त्रिपाठी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।